अरपार रेडियो की प्रस्तुति
सुनो गजर क्या गाए।
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी,
बिलासपुरियंस की आवाज।
नमस्कार, अलंकृता हाजिर है लेकर गजर में बिलासपुरियंस की आवाज। बिलासपुर के लोगों की बात तो हम सुनेंगे, पर इसके पहले आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।
कैसी रही आपकी दीपावली? और आपने अपनी दीपावली में फटाकों का सहारा लिया या दीप और रंगोली से सिया राम और माता लक्ष्मी का स्वागत किया? वैसे अरपा रेडियो के सभी साथियों ने तो धूमधाम से दिवाली का आनंद लिया, पर हमारी दिवाली जिनके वजह से रोशन है, यानी हमारे कुम्हार, जिनके बनाए दियों से सजते हैं हमारे घर और त्योहार, चलिए सुनाती हूँ आपको उनकी बात।
निक्की प्रजापति तालापारा कुम्हार मोहल्ला में रहते हैं।
अच्छा दीदी, आप यहाँ पे दुकान लगाती हैं?
जी।
कहाँ पे दुकान लगाती हैं?
हरदेव लाला स्कूल के बाहर।
आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं?
10-12 साल से ज्यादा हो गया। छोटे छोटे दे तक से लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जगह वगह के लिए ना बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि अब मान लीजिए पूरा मतलब मूर्ति बेचते हैं हम लोग गणेश लक्ष्मी, तो जगह के लिए ना बहुत दिक्कत। अब लक्ष्मी जी का है तो वहाँ कपड़ा वाला मतलब बीच में घुस जाता है, जबकि वहाँ उसका स्टॉल लगना नहीं चाहिए।
कपड़ा वाला घुस जाता है? मतलब
कपड़ा वाला है ना, एक
कपड़ा बेचने वाला।
हाँ, 12 महीना लगाता हूँ बोल के वो घुस जाता है, चलो भाई सबका पेट रोजी लगा है बोल के।
तो जगह की परेशानी हो रही है?
जगह की परेशानी है और बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। जैसे सरकार से लाभ है तो कुछ लाभ मिल ही नहीं पाता। जैसे कुम्हार लोगों को जगह दे, जमीन दे, तो कुम्हार लोग आगे बढ़े, काम उम करने के लिए तरक्की करें। किसी के यहाँ घर है तो रहने का, काम करने का ठिकाना नहीं है, तो आदमी कुम्हार हो के भी सामान खरीद के बेचता है, बना नहीं सकता।
कब से यहाँ पे आ रही है? कितनी उम्र की रही होंगी आप?
वही 15 साल की थी तब से लगा रहे ना बुआ। अब हम लोगों का पूरा खानदानी मतलब चलते आ रहा है। अब कुम्हार के यहाँ जन्म लिए हैं तो देखेंगे, तो बचपन से सीखेंगे ही सब करने के लिए।
मतलब हमारे दादा हमारे बाप वो लोग गुजर गए, वो लोग लगाते थे तब हम लोग लगाते
हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं।
घर में बनाते हैं आप लोग दिए वगैरह?
हाँ, बनाते हैं, प्रजापति हैं।
और क्या क्या बनाते हैं
आप? मूर्ति हो गया गणेश लक्ष्मी का बनाते हैं, दिया वगैरह बनाते हैं, बाकी समय 12 महीना का काम चलता है।
गणेश वगैरह
सब बनाते हैं।
12 महीना क्या काम चलता है?
12 महीना का काम वही है, जैसे कि सीजन हुआ तो गुलदस्ता वगैरह बना लिए, गमला उमला हो गया।
अच्छा।
वैसे तो जगह नहीं है घर में 12 महीना काम करने के लिए, फिर भी एडजस्ट करके कर लेते हैं। गणेश दीपावली बनाते हैं 12 महीना, साल साल भर गणेश दीपावली ही बनाते हैं, तैयारी चलते रहती है।
तो एक मूर्ति बनाने में आप लोगों को कितना वक्त लगता होगा?
बहुत लगता है दीदी, एक दिन में मान लीजिए 10-5 मूर्ति बना लिए तो दूसरे दिन उसको जोड़ने में, पूरा सफाई करने में 2-3 दिन लग जाता है।
जोड़ने में बोले तो दीदी
मतलब उसको सांचा से निकालेंगे, फिर उसको फिनिशिंग करेंगे, हाथ सूड़ वगैरह लगाएंगे। अच्छा। दीपावली का है तो उसमें उसको निकालेंगे लक्ष्मी जी।
जैसा 10 मूर्ति हमने गणेश जी का निकाले सांचा से, उसको तैयार करने में 5 दिन लग जाएगा।
रंग वगैरह भरना अलग से?
वो तो फिर
वो लास्ट
तो बनाने का है जो मैं बता रही हूँ, और फिर वो कलर वालर करने के लिए तो 1.5 महीना से शुरू रहता है।
सही बात है,
1.5 महीना।
और ये कुम्हार का जो सामान है ना प्रजापति, मिट्टी का सामान जो है, कपड़ा लगता जैसे महंगा हो जाएगा तो जनता समझ जाएगी कि भाई ये इसमें दिल आ गया है, तो 2000 का है तो 2100 रुपए कम दे के 1900-1800 में ले लिए। अब मिट्टी का सामान जो है मूर्ति वगैरह इतना बोल रहे, तो मिट्टी का तो है इतना महंगा है बोल के कीमत नहीं मिलता है।
वो तो बोलते
अरे मिट्टी का ही
तो है। मिट्टी इतनी सी शान के बताओ हमें, इस मिट्टी को हमने आटे से ज्यादा गूंदना पड़ता है, छानना पड़ता है,
बहुत मेहनत करना पड़ता है।
बहुत मेहनत करते, ये कुम्हारे ही कर पाता है।
सही बात है, वो बोलते ना जिसका काम उसी को साझा, और करे तो ठेंगा बाजे।
हाँ, सही बात।
तो अच्छा, तो ये जो मिट्टी होती है ये कुछ स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है कि
ये खेत की मिट्टी, जैसे आउटर में
मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी, इसी मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं।
कन्हार मिट्टी बोले तो?
कन्हार मिट्टी जैसे खेतों में होता है धान वन हाँ। वो आता है ना
हाँ हाँ।
वो ही मिट्टी का काम करते हैं, पर उसमें ना थोड़ा मसाला मिलाना पड़ता है।
जैसे वो भूसा मिलकर राख आता है ना, काली हाँ। राख निकलती है, उसको मिलाओ और उसको बड़े से उसमें गड्ढे जैसे रहता है उसमें भर के उसको छानो पसाओ, तो अलग अलग होगा, गोटी अलग होगा। जैसे कि खेत का धावो है तो क्या बोलते हैं आपका
पैरा
पैरा कांदी वगैरह सब अलग होगा पूरा, फिर उसको पसा के उसको फैलाओ कड़ा करो, उसके बाद जाके काम चालू होता है। बहुत मेहनत है दीदी मिट्टी के,
बहुत लंबा प्रोसेस है और दाम उतने नहीं मिलते,
नहीं नहीं मिलते,
कुछ भी नहीं मिलता
उतना। जैसा कि हम चाहें इस मूर्ति को हम 200-250 में बेचे ऐसा नहीं होता, लोग क्या कहेंगे ये मूर्ति इतनी बड़ी है 50 रुपया हम देवे तो दे, नहीं तो मैं जात हूँ।
मिट्टी का तो है ऐसा बोलते हैं। अब जब प्रजा कुम्हारी नहीं बनाना चाहेगा तो जनता को कहाँ से सामान उपलब्ध होगा आप बताइए ना। अब जैसे हम लोग कुम्हार है बना रहे हैं तो हमसे कोई भी कास्ट के लेके अपना बेच रहे हैं, दो पैसा को व्यापार कर रहे हैं, जब वो बनाना ही नहीं चाहेगा तो व्यापार आदमी कहाँ से करेगा। यही सामान जो अपन यहाँ पे लगा के स्टॉल बेच रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा मोल भाव हो रहा है कीमत का, वो इसी को कहीं मॉल वगैरह हम रख दिए ऑनलाइन के लिए तो जो हम 50 में दे रहे हैं तो वहाँ 200 की हो जाएगी, क्योंकि वो बड़ा शॉप हो गया है ना माना जाना, और यहाँ है तो सड़क पे तो लगाए हैं ऐसा हो जाता है। यहाँ तो एक ग्राहक को समझाते समझाते ना गला सूख जाता है, भैया दिन भर से बैठे हैं खड़े हैं धूप में, हमको भी दो पैसा बचना चाहिए, तो बहुत मुश्किल से ले दे के देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, विकास नहीं हो पा रहा है कुम्हार लोगों का।
इसीलिए ना हमारे लोग के बाल बच्चे स्कूल कॉलेज कहाँ जा पाएंगे,
बेरोजगार टाइप के हो गए हैं।
अच्छा दीदी ये बताइए मुझे कि जो आप लोग की एक मूर्ति है उसको बनाने में लगभग कितनी लागत लगती होगी?
लागत अब आपको हम कैसे बताएं, जैसे
लगभग अनुमान से कुछ बता दीजिए, और फिर मेरे को ये जानना है कि उसको बेचने में आप लोग को कितना आमदनी हो पाती है।
ये तो मैं भी नहीं बता।
गणेश जी की मूर्ति है,
पूरा दिन के जैसा थोड़े दिन बचा है तो मन से लगन से काम करेंगे, हमने इतनी मूर्ति को हमें तैयार करना है, चाहे रात हो चाहे खाना ना खाए हो, ऐसा मन को लगता है इतनी मूर्ति बन जाएगी तो हमारा ये काम हो जाएगा, मन से तो हम यही सोचेंगे, लेकिन जो हम मन में सोचते वो होते ही नहीं कभी।
ये थी कुम्हारपारा में रहने वाली आरती प्रजापति और उनकी बुआ जी से अलंकृता की बात। तो देखा आपने कि एक दिए या एक मूर्ति के पीछे कितनी मेहनत छिपी है, और अगर इनकी मेहनत के अनुसार मूल ना मिले तो दिल तो दुखेगा ही ना। हम दिवाली में अक्सर कितना खर्चा करते हैं, कहीं झालर खरीदते हैं तो कहीं फटाके खरीदते हैं, पर अक्सर जब दिए लेने जाते हैं तो हम बहुत मोल भाव किया करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि फटाकों के बजाय थोड़े से पैसे इन दियों और मूर्तियों पे भी खर्च करें, ताकि इनके घर की दिवाली भी और रोशन हो सके। ज्यादा मोल भाव ना करें, क्योंकि ये केवल मिट्टी नहीं है, किसी की मेहनत है तो किसी का रोजगार है, तो किसी के घर की दिवाली का आधार है। दिवाली तो हो गई, पर कुछ दिनों में आने वाले हैं चुनाव, और इसी विषय में मैं जा पहुंची हमारे देश के युवाओं के पास, जो वोट देने का एक्सपीरियंस पहली बार लेने वाले हैं। तो चलिए सुनाती हूँ आपको मेरी प्रथम बातचीत कुदुरन में रहने वाले 21 वर्षीय अरुण यादव जी के साथ।
ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है फिलहाल?
21।
मतलब ये फर्स्ट टाइम है आपका वोट देने का?
हाँ।
तो आपको कैसा महसूस हो रहा है?
ऐसा कि पहली बार देने जा रहा हूँ, मजा आएगा, अच्छा लग रहा है, बोले तो कि मैं भी वोट दूंगा।
तो आपके विचार से जो आपके साथ वोटिंग दे रहे हैं और भी, उनको कैसे नेता चुनना चाहिए?
मेरे हिसाब से कि वैकेंसी जो निकाल रहे हैं कुछ अच्छा अच्छा पोस्ट निकाल, क्योंकि हमारा तो उम्र चले गया, मैं भी जॉब की तैयारी करता हूँ, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, 30 साल तक है मेरे को तैयारी करने का, लेकिन मेरे घर में बोल रहे कि एक दो साल और देख ले फिर कुछ काम करना है, वैकेंसी नहीं निकले तो कैसे करेंगे, तो क्या करे।
और कैसा महसूस हो रहा है, जिम्मेदार सा महसूस हो रहा है?
अपने आप पर ऐसे लग रहा है कि मैं अच्छे नागरिक को चुनूंगा, और सोचते हैं कि अभी मीटिंग बैठा के किसको देंगे उसको देंगे, एक तरफ यानी मन नहीं चल रहा है, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सोचे नहीं वैसा।
अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि युवा देश बदल सकते हैं, और या युवा नई सत्ता ला सकते हैं?
हाँ, बदल सकते हैं, जरूर बदल सकते हैं, युवा में ताकत बहुत है। और नई सत्ता की बात करें तो इधर तो नेता लोग बढ़ने नहीं देते, वही कैंडिडेट खड़े होते हैं, जैसे नया कुछ देना चाहिए कैंडिडेट।
तो सुनी आपने अरुण यादव जी और मेरी बातचीत, इनका कहना था कि बार बार एक ही कैंडिडेट को मैदान में उतारना सही नहीं है, और भी लोगों को मौका देना चाहिए, इससे जनता को भी ज्यादा विकल्प मिलेंगे। अब बातचीत की अगली कड़ी में सुनाती हूँ आपको मेरी अगली बातचीत 18 वर्षीय निकिता कौशिक के साथ।
आपका ये फर्स्ट टाइम रहेगा वोट देने के लिए?
यस। तो कैसे एक्सपेक्टेशन है आपके, कुछ गाइडेंस है कि कैसा नेता आपको चुनना चाहिए?
अपनी कॉलोनी की सिचुएशन देख के तो लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो एक बार बोले तो वो सुन ले, ध्यान दे, एटलीस्ट सबकी राय ले, तो वैसे होने चाहिए।
और प्रॉब्लम्स को भी समझे।
या प्रॉब्लम सिचुएशन जो मतलब सुन के एटलीस्ट ध्यान तो दे, ऐसे नहीं कि इग्नोर कर दे या कॉल रिसीव करने के बाद ध्यान ना दे, या एटीट्यूड रहे, ऐसे नहीं चाहिए। नेचर वाइज अच्छे होने चाहिए जो अपने सब सुने।
ये आपका फर्स्ट टाइम वोटिंग है तो आपको कैसा फील हो रहा है?
एक्साइटेड।
और एक्साइटमेंट के साथ और क्या
उम्मीदें हैं कि अपनी कॉलोनी की भी देखे, मेन यही है बस, और कुछ
रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है?
हो रहा है।
फर्स्ट टाइम में वोटिंग, अभी तक तो सब बोलते थे बच्ची है बच्ची है, अब गवर्नमेंट भी आपको चूज करने का अधिकार देती है,
अपनी डिसीजंस लेने की एज है।
तो आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो वोट देंगे इस बार आपके साथ पहली बार, उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि जैसे उनकी फैमिली का कुछ रहता है ना, फैमिली का कि इसी पार्टी को चूज करते हैं, तो वो फैमिली के साथ जाना चाहिए या अपने विवेक से काम लेना चाहिए?
फैमिली के साथ जाना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, कुछ सोच समझ कर ही किसी को वोट देंगे।
पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी सोच थोड़ा फैमिली से अलग जाए, मतलब आपको लगे कि ये वाले लीडर चूज करेंगे, या आप भी तो अपने फैमिली को कन्विंस कर सकते हो?
कर सकते हैं, तो अब फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह हमें बताएंगे कि तुम अपना भी डिसीजन देख सकते हो कि तुम उसमें करो हम उसमें करें। वो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह ट्रीट करेंगे। और मेरा तो फर्स्ट टाइम है तो फैमिली के साथ ही जाना चाहिए।
निकिता जी ने तो कुछ बातें बताई, आपका इस विषय में क्या मानना है हमें जरूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9179132444, या फिर लिख भेजिए अपने विचार हमारे ईमेल पर arpaaradio@gmail.com पर। इलेक्शन से जुड़े आपके विचार भी हम जरूर जानना चाहेंगे। इसके बाद मैं जा पहुंची गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली जर्नलिज्म की स्टूडेंट परिधि पुजारी के पास। सुनाती हूँ आपको मेरी और परिधि की बात।
मैं थर्ड ईयर कर रही हूँ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन।
जर्नलिज्म आपको आगे एज अ करियर ऑप्ट करना है, ये आपके दिमाग में कैसे आया?
करियर के आगे का नहीं पता, पर जब मुझे बीए करना था तो मैंने जर्नलिज्म को इसलिए चुना क्योंकि उस फील्ड की क्वालिटीज में लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और एट दैट पॉइंट मुझे वो सारी चीजें एक लगा कि हाँ ये कोर्स मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो मैंने इसे ट्राई दे दिया।
तो अभी जैसे आप अपने फाइनल ईयर में पहुंच गई हैं, तो आपको क्या लगता है जैसा आपने सोचा था उस प्रकार से ये कोर्स आपके लिए सही साबित हुआ?
मैं कोर्स से खुश हूँ, पर हाँ ये बहुत बहुत ज्यादा ही मेरे लिए लाभदायक रहा क्योंकि जर्नलिज्म में रिलेटेड मैं और जो चीजें थी वो मैं समझ पाई हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मुझे अपना करियर बनाना है तो मैं इसको चुन सकती हूँ।
अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फिलहाल चुनाव का माहौल चल रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो चुनाव जैसे चल रहा है, पूरे शहर में ढिंढोरा है कि हमें किसको चुनना चाहिए, किसको वोट दिया जाए, है ना?
जी।
आपकी एज क्या होगी परिधि जी फिलहाल?
मेरी एज है 20 साल की।
अच्छा, आप 20 साल की हैं। तो आपकी वोटर आईडी वगैरह आ गई है?
हाँ, मैंने अप्लाई कर दिया था।
तो आपको पता है कि कितने प्रकार के चुनाव होते हैं?
जो चुनाव होते हैं, जो वोटिंग होती है, वो लेवल्स में होती है, डिफरेंट लेवल्स पे, लाइक सेंट्रल, स्टेट, और नीचे स्तर से शुरू होती है गाँव, फिर उसके बाद पूरा एक स्टेट, देन एक नेशन, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हैं। तो ये मुझे पता है कि ऐसे ऐसे इसका रोल होता है।
अच्छा, तो अभी ये जो चुनाव है ये किसके लिए हो रहे हैं चुनाव?
ये हमारे स्टेट के लिए हो रहा है।
अच्छा, तो परिधि जी ये बताइए कि जैसे चुनाव होते हैं ना, तो इसमें हमें व्यक्ति विशेष को चुनना चाहिए या पार्टी विशेष के आधार पे अपना निर्णय लेना चाहिए?
मुझे तो लगता है कि व्यक्ति विशेष के आधार पर होना चाहिए क्योंकि जो जो दिखेगा वही दिखेगा, अगर जो काम कर रहा है उनको वोट मिलना चाहिए, पर अगर मुझे पता चलेगा अगर वो पार्टी के नहीं है जिन्हें मैं सपोर्ट करती हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर मैं व्यक्ति विशेष के लिए चयन करूँ।
अच्छा, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। तो बहुत बार क्या होता है ना परिधि जी, हम देखते हैं कि
जो पूरा परिवार होता है ना कि एक साथ बैठ के अपना मत डिसाइड करता है, ऐसे मानना होता है कि हम इस पार्टी को वोट देंगे या उस पार्टी को वोट देंगे, है ना। या बहुत बार ऐसा होता है कि सालों साल से ये चला आता है कि हम इसी पार्टी को वोट देते हैं हमारे परिवार वाले। तो जब पहली बार आप वोट देंगी तो आप अपनी फैमिली के अनुसार जाएंगी या आप अपने मत से अपने विचार से वोट देंगी?
नहीं, मैं अपने मत से ही वोट दूंगी, चाहे अगर मेरी पूरी फैमिली में भी ये रहे कि नहीं तो मैं उसे वोट देना, तो मैं वो नहीं मानूंगी। मैं अपने मत के हिसाब से, अपने सोच और समझ के हिसाब से वोट दूंगी।
बहुत बढ़िया बात की आपने कि वोट जो है वो अपने हिसाब से देना चाहिए, सोच के देना चाहिए, समझ कर देना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या ये बताना चाहेंगी, जैसे आपका प्रथम वर्ष है ये वोट देने का, तो आप अपना नेता किस आधार पे चुनेंगी? मतलब आप क्या चाहेंगी कि आप जिसको चुन रही हैं उसमें कैसी क्वालिटीज हो?
मैं अगर चुनना चाहूंगी, अगर मुझे किसी पॉलिटिकल फिगर की क्वालिटीज देखनी है, तो वो पहला होगा कि वो जनता के बारे में सोचे, बढ़ चढ़ कर काम करे। मैं कोई भी ऐसे आलमी वाले नेता से बिल्कुल भी अपना वोट नहीं जाया कर सकती। चाहूंगी कि जिन पर भी मैं वोट दे रही हूँ वो मेरा वोट वेस्ट ना जाए, उनका बातें सही हो, जिन बातों के लिए वो हमें प्रॉमिस कर रहे हैं वो सारे खरे उतरे। ये भी देखूंगी कि पिछले जो वर्ष है उनने किया है कि नहीं किया है, तो ही जाके आने वाले वर्षों में मैं उन्हें वोट करूँ। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, क्वालिटी हैं, जो एक देख के मैं वोट करना चाहूंगी अपने व्यक्ति विशेष को।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत अच्छे से आपने बताया कि वाकई में एक नेता में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि जब मैं चुनाव के लिए जाऊं और जब मैं अपना वोट दूं, तो मैं भी किसी ऐसे ही व्यक्ति को चुनूं जो वास्तव में आए, लोगों की परेशानियां सुने और उसका समाधान निकालने में विश्वास रखे।
जी।
ना कि जो आए और खाली वोटिंग के टाइम पे दिखे और उसके बाद वो गायब हो जाए। हाँ परिधि जी, ये बताइए कि आपने तो बड़ी समझदारी के साथ मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, पर पहली बार है आपकी वोटिंग का, तो आपको महसूस कैसा हो रहा है?
मुझे बहुत ही ज्यादा थ्रिल्ड और एक्साइटमेंट भी महसूस हो रहा है, प्लस मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और अपॉर्चुनिटी भी लग रही है। तो ये एक मिक्सचर ऑफ फीलिंग बोल सकते हैं मेरे अंदर जो चल रही है, तो ये मिक्स फीलिंग है एक अपॉर्चुनिटी और एक्साइटमेंट की।
और आपके दोस्त होंगे बहुत सारे जहां आप जाती हैं, वहां आपके कॉलेज में, आपके ट्यूशंस में, तो क्या कभी आप दोस्तों ने जो पहली बार वोट देने के लिए जा रहे हैं वो साथ में बैठ के कभी इस विषय पे बात की है आप लोगों ने कि कैसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए?
जी बिल्कुल, हमारा जो टॉपिक हो जाता है, हमारा विषय घूमते घूमते वो इस टॉपिक पर आता ही है कि हमारे स्टेट है वो या फिर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है वो क्या काम करती हैं, क्या नहीं करती हैं, तो हम उनकी निंदा और तारीफ दोनों करते रहते हैं। तो ये बात करने का टॉपिक हमारा रहता ही है, और हम तो जर्नलिज्म के ही हैं, तो ये तो चलता ही रहता है हमारा कि ये अच्छा नेता है, इन नेता ने ये किया है, ये पॉलिटिकल पार्टी ने आज ये किया वो किया। तो ये हाँ बोल सकती हूँ कि मैं मेरे दोस्तों में बात ये सब होते रहती है।
अच्छा, तो आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग कहीं पीछे नहीं रहते हैं मतलब?
जी बिल्कुल,
बिल्कुल सही बात है, आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हैं, पत्रकारों को तो हर विषय में जानकारी होना एकदम आवश्यक बात है। और ये बताइए कि आपके कॉलेज में क्या वातावरण है, क्या माहौल चल रहा है फिलहाल?
फिलहाल हमारे कॉलेज में ये बहुत हो रहा है कि वोटिंग चल रही है, किसे वोट देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, हर टेबल पर वैसे ही हो रहा है, पर ज्यादातर ये भी पता है सबको कि क्या होने वाला है रिजल्ट उसका, कि कौन जीतने वाला है। ये कुछ लोगों ने पहले ही निर्णय बना लिया है कि ये पार्टी ही जीतेगी, ये नेता ही जीतेंगे, और कुछ लोगों का तो कोई इम्पोर्टेंट ऑफ रोल ही नहीं, उनके लिए नोटा ही है और नोटा ही चलते आ रहा है।
तो ये जो लोग हैं जिन्होंने मतलब चुनाव से पहले ही अपना निर्णय बना लिया है।
बिल्कुल बिल्कुल,
मतलब इन दिनों कॉलेज भी जो है वो पॉलिटिक्स का एक हब बना हुआ है कहीं ना कहीं, और स्टूडेंट्स काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉलिटिक्स में।
बहुत बढ़ चढ़कर।
और जो स्टूडेंट्स आपके साथ या और जो लोग हैं जो आपके साथ अभी प्रथम बार वोटिंग करेंगे, पहली बार वोट देने जाएंगे, उनको आप कुछ कहना चाहेंगी?
मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी उन्हें कि अपना वोट बिल्कुल सोच समझ कर डालिए, किसी के दबाव में आकर नहीं डालिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अपॉर्चुनिटी समझ कर डालिए, और अपना वोट देने से पहले दो बार सोचिए कि क्या ये सही है, क्या ये डिजर्विंग है उसके बाद ही डालिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका परिधि जी।
तो इन्होंने तो काफी अच्छे से बताया कि हमारा नेता कैसा हो। आप सब भी सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और फिर जरूर मतदान कीजिए। तो अब वक्त हो चुका है आप सबसे विदा लेने का, पर विदा लेने से पहले चलिए सुनाती हूँ आपको शान की आवाज में राजीव राणा का लिखा हैप्पी हैप्पी दिवाली गीत। अलंकृता चाहती है आपसे इजाजत, फिर मिलूंगी आपसे अगले सोमवार लेकर बिलासपुरियंस की आवाज। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्ती करते रहिए और सुनते रहिए अरपा रेडियो।
अरपा रेडियो की प्रस्तुति
सुनो गजर क्या गाए।
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी
बिलासपुरियंस की आवाज।
गजर ने किया है इशारा।
आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
वो ना हैप्पी हैप्पी सॉन्ग की, क्योंकि वो बिलासपुरियन में ही है ना।
हाँ
तो हैप्पी हैप्पी सॉन्ग की कुछ लाइन ऐसा कुछ टाइप का कर दो कि मतलब बस ये बहन दो उसको जोड़ दो, मतलब शाम का वो करके थोड़ा सा बिना बताए दो चार लाइन सुना देंगे।